दौला पुस्तक चौदवी लेक्चर नंबर 14 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं सिद्धे विरुद्धशयले अज्जत्थ बहित्थ बन्धनं मुक्के भत्तिये अहं नम्यूं पुनो पुनो बंधनम ओचम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड, और इस चौदवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 119 पर मांगे 119। कल हमने एक श्रेणी वर्गणा की प्ररूपणा देखी थी, उसमें कंटिन्यूएशन में सारे हमने नाम देखे थे और किससे कितना जघन्य से उत्कृष्ट कितना गुना होता है वगैरह, जो अलग अलग गाथाओं के आधार से उसकी बात हमने की थी। अब यहाँ नाना श्रेणी वर्गणा की प्ररूपणा भी हमने पढ़ी थी कि कौन सी वर्गणाएं वगैरह वगैरह कितनी होती है, यानी उनके नंबर ऑफ वो वर्गणाएं कितनी है विश्व में, उसकी बात हमने देखी थी। उसके बाद यहाँ 119 पृष्ठ पर शंका पूछ रहे हैं, वहां से पढ़ेंगे कि स्वयंभू रमण समुद्र में वर्तमान काल में यतः यथा करते थे क्योंकि जगत प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण महामत्स्य दिखलाई देते हैं, अतः उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा की सदृश धन वाली वर्गणाएं जगत प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण होती है, ये प्रश्न है। फिर से हमने बादर निगोद उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा कहाँ होती है, तो वो महामत्स्य उसके शरीर के आधार से नहीं, पर वहां पर वो सूक्ष्मों का एक बंधनबद्ध समूह पाया जाता है। तो प्रश्न क्या था, ऐसे तो असंख्यात जीव है और अपने उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणाएं कितनी होती है, देखो इसके ऊपर के उसमें देखो तो, हाँ नहीं 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 ऊपर ऊपर का पैराग्राफ नीचे से तीसरी लाइन, वहां क्या लिखा है, प्रत्येक शरीर वर्गणाएं बादर निगोद वर्गणाएं और सूक्ष्म निगोद वर्गणाएं सर्वत्र जघन्य भी और उत्कृष्ट भी कितनी है, तो आउली के असंख्यात वे भाग प्रमाणी होती है। उसमें हिना दिखता होगी पर उसका तो प्रमाण है, और ऊपर जो कहा था जगत प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण वो घटित नहीं होता, ऐसा उन्होंने इन्वर्टेड में डालकर बताया था। तो इसलिए शंकाकार पूछता है महामत्स्य तो जगत प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, और आप कहते हैं आउली के असंख्यात वे भाग प्रमाण ही जघन्य हो या उत्कृष्ट हो बादर निगोद वर्गणाएं होती है, तो उसका उन्होंने अभी उत्तर देंगे। उत्तर क्या देंगे कि क्षपित कर्मांशिक रूप से आए हुए जीव भी अवली के असंख्यात में भाग प्रमाणी हो गए, और गुणित कर्मांशिक आए हुए किसी अन्य जीव के शरीर में वो भी उतने ही हो गए। तो अभी उसका उत्तर समाधान देखते देखो, नहीं क्योंकि सब महामत्स्यों में उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा होती है ऐसा नियम नहीं है, बादर निगोद वर्गणा ने उसके आधार से रहने वाले, और सूक्ष्म निगोद वर्गणा वो आधार के बिना परंतु वहां पाए जाने वाली, इस तरह से हमने देखा था। देखो ऐसा नियम नहीं है, तथा जगत प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण गुणित कर्मांशिक जीवों का अभाव है, जितने गुणित कर्मांशिक जीव होंगे उतने उस अपेक्षा से वहां वो वर्गणा बड़ी होगी, क्योंकि इतने जीवों के सभी छह पुंज होते हैं। इसलिए भी जगत प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण उत्कृष्ट वादर निबोध वार्गणाएं नहीं हो सकती। यतः यानी क्योंकि एक समय में गुणित कर्मोशिक जीव उत्कृष्ट रूप से आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण ही होते हैं, अतः उत्कृष्ट सदृश धन वाली वर्गणाएं, सदृश धन वाली वर्गणाएं उसके सेम नंबर होना चाहिए, आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण ही होती है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। तो उत्कृष्ट मादर निगोध वर्गणा हमने एक जीव की अपेक्षा तो नारके में देखा था ना अंतिम समय में, और फिर वो तो अग्निकाय की बात देखी थी, अग्निकाय की तो प्रत्येक शरीर थी, प्रत्येक शरीर थी और प्रत्येक हाँ हाँ हा? उसमें भी देखी थी मूली थ्योर वगैरह में, लास्ट में कहाँ देखा था। मिला क्या उत्कृष्ट मादर निगोद वर्गणा देख लो आप। यहाँ 91 से वो स्थानों की बात वहां देखी थी, जगन ने बताई थी श्रीकशाय के अंतिम समय में, और फिर बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट कहाँ पर है जरा देख लो। पहले अंतिम समय में, फिर वो नीचे वो लाया था बाद में, ये जो मूली थ्योर वो तो 109 पेज पर बताया था, परंतु वो तो मध्यम है, हीनादिक बताया था। एक सौ ग्यारह पर चौथी मूली के शरीर में वो तो देखा था मैंने। हाँ क्योंकि महामत्स्य की बात उन्होंने सूक्ष्म में ली थी, बादर में तो वही मुझे इसीलिए थोड़ा शायद उसमें भी आता होगा, उसमें भी आता होगा, परंतु यानी एक बंधन बद्ध कहाँ पाए जाते इस तरह से, उसमें होना चाहिए। पुलवियों का प्रमाण उतना होता है, पुलवी हाँ है ना, उसकी बात नहीं चल रही है। जीव अवली के असंख्यात विभाग है, गुणित कर्मांशिक जीव अवली के असंख्यात विभाग है, पर पुलवियों का गुणकार जगत श्रेणी का असंख्यात विभाग प्रमाण है, वो बराबर है। जगन्य से उत्कृष्ट का गुणकार है वो, और अवली का असंख्यात विभाग है वो गुणित कर्मांशिक जीवों का प्रमाण है। अब ठीक है, यहाँ उनको उन्होंने महामत्स्य को लिया है, यानी क्योंकि प्रश्नकार ने वैसा पूछा था। हाँ, अभी हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे 119 पर। अभव्य प्रायोग्य जघन्य स्थान में भी क्षपित कर्मांशिक लक्षण से आए हुए जीव आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण ही होते हैं। देखो देखो, हमने तो कहाँ देखा था क्षपित कर्मांशिक आए हुए, हमने तो क्षीण कषाय के अंतिम समय में देखा, परंतु कोई अभव्य प्रायोग्य जो जघन्य स्थान होगा, अभव्य जीव जो अभी श्रेणी नहीं चढ़ा है, ऐसा है, यानी उसने जो यहाँ तो उस ओरिजिनल एक जीव के जो मुनिराज के जो शरीर के आधार से निगोद थे वो भी चले गए थे। दूसरी बात, यानी वो उनमें निगोद निकल गए हैं ऐसा जीव लिया था। अब अभव्य प्रायोग्य ने वह निगोद तो है वहाँ पर, जितने हैं वहाँ स्थित है उस जीव के भी, यानी ये निगोद चले गए हैं इसलिए वहाँ जीव कम हो गए क्षपित कर्मांशिक, ऐसा नहीं है। तो अभव्य प्रायोग्य का अर्थ तो मिथ्या दृष्टि के भी, जो अभव्य प्रायोग्य भी उसने कोई कर्म खिपाया भी नहीं, ऐसा जीव लिया रेगुलर, उसके भी जघन्य स्थान में, उसके जघन्य स्थान में भी, देखो जघन्य स्थान तो क्षीण कषाय की अपेक्षा बताए, अब अभव्यों में भी जघन्य स्थान जो घटित कर सकते हैं वहां पर भी क्षपित कर्मांशिक जीव अभव्य के प्रायोग्य स्थान है, यानी ऐसे योग्य, उसके योग्य स्थान लिया, वहां पर भी निगोद कितने पाए जाएंगे, कौन से निगोद, क्षपित कर्मांशिक निगोद अनंत है, पर किसी भी काल में क्षपित कर्मांशिक आवली के असंख्यात भाग प्रमाण ही होंगे, यानी अवली के असंख्यात भाग प्रमाण जीव, क्षपित कर्मांशिक जीव ऐसे निगोद पर्याय में पाए जाएंगे। ऐसे कभी मैक्सिमम गुणित कर्मांशिक जीव कितने हो सकते हैं, वो भी अवली के असंख्यात भाग, यानी सभी अनंतानंत जीवों को क्षपित कर्मांशिक या गुणित कर्मांशिक नहीं कह सकते, उसका प्रमाण मैक्सिमम कितना होगा, अवली के असंख्यात भाग, भले एक शरीर में अनंत जीव है, जितने शरीर है सब में मिलकर क्षपित कर्मांशिक जीव इतने ही होगा, ये कहना चाहते हैं। यानी ऐसा कोई कहेंगे कि बारहवें गुण स्थान में इसलिए मरते 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 थोड़े बचे हैं, तो कहते अभव्यों के प्रायोग्य भी इतने ही हो गए, तो क्षपित कर्मांशिक लक्षण से आए हुए जीव आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण ही होते ही लगाए। इसलिए यवमध्य प्ररूपणा में कहा गया उपदेश प्रधान है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, ये बाद में यवमध्य बात बताएंगे कि एक परमाणु वाले कितने हैं, दो परमाणु अधिक है, तीन परमाणु, वो कितने अधिक अधिक होते होते यव मध्य तक पहुंचेगी, फिर उनकी संख्या कम होगी, वो बाद में बताएंगे शायद। अजघन्य अनुत्कृष्ट, जो जघन्य भी नहीं है जो उत्कृष्ट भी नहीं है, बादर निगोद वर्गणाएं वर्तमान काल में असंख्यात लोक प्रमाण उपलब्ध होती है। जघन्य कितने आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, उत्कृष्ट भी आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, परंतु बीच वाले असंख्यात लोक प्रमाण। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर से असंख्यात लोक प्रमाण, हाँ क्या संख्यात हो गए, बादर निगोद वर्गणाएं संख्यात होगी, अरे एक एक पुलवी में असंख्यात होती है, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण देह है ना, ऐसे पुलवियां भी एक एक अंडर में आवास में उसको सब आप देख सकते हैं। देखो सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद सदृश धनवाली वर्गणाएं, यानी जगन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा हमने देखी थी ना, कहाँ होती है? हाँ, वो कहीं पर भी होती है ना, जल थल आकाश में कितनी होती है, तो आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण होते, वो नंबर ऑफ वर्गणाएं कितनी है उसकी बात है। आप यानी नंबर ऑफ वर्गणा बात अलग है बादर में भी, और नंबर ऑफ पुलविया जीव अलग बात है, यानी उतनी ही परमाणु की संख्या वाली वर्गणाएं कितनी होती है एट अ टाइम, ये वहां बात चल रही थी। और ये असंख्यात लोक प्रमाण जो बताए हैं, बादर निगोद वर्गणाएं कितनी है एट अ टाइम उसकी बात है, उसके साथ आप पुलवियों की और देहों की चर्चा कर रहे हैं, वो बात नहीं है। देखो क्या कहना चाहते, फिर से देखो, पहले हमने जघन्य और उत्कृष्ट का प्रमाण देखा, जघन्य में कितने नंबर ऑफ परमाणु और कैसे कैलकुलेट करना छह पुंजों के द्वारा, बादर निगोद या सूक्ष्म निगोद में, वो हमने देखा। और उत्कृष्ट में एक एक परमाणु से बढ़ते हुए सारे विकल्प देखे, उसमें हमने जीव भी कितने होते उसकी चर्चा की। अब यहाँ उसकी चर्चा नहीं है कि समान सदृश धन वाले ने इतने नंबर ऑफ परमाणु वाला जो कोई एक वर्गणा है, दो वर्गणा है, तीन वर्गणा, ऐसी वर्गणा एट अ टाइम कितनी होती है उसकी चर्चा है। यहाँ उसी की चर्चा चल रही है, वो पहले वाली अभी भूल जाओ। यहाँ पहले तो वर्गणा किसको, और एक एक सदृश धन वाले ने उतने नंबर ऑफ परमाणु चाहिए, तो मिनिमम है वो भी आवली के असंख्यात भाग, मैक्सिमम है वो भी आवली के असंख्यात भाग, इन बिटवीन वाली वर्गणा एट अ टाइम असंख्यात लोक प्रमाण होगी, ये यहाँ कहना चाहते हैं। अब ये तीसरी लाइन पढ़ रहे थे 120 पेज पर। क्या क्या कैसी एक वर्गणा होगी? देह के अवगाहना के भेद है, उसके आधार से कितने जीव रहते उसके भेद है, उसमें क्षपित कर्मांशिक से या गुणित कर्मांशिक है उसमें भेद है, एक ही वर्गणा कैसे हो सकती है? नहीं समझे, एग्जैक्ट उतने परमाणु होने चाहिए, आपका ऐसा प्रश्न क्यों है? नहीं नहीं, औदारिक शरीर में भी हिना दिखता होती है ना, उसमें भी होती है कि नहीं होती है? आपके प्रश्न मुझे नहीं ख्याल नहीं आ रहे। देखो देखो, अभी वो एक जीव कहते वो बच्चा है, बड़ा हुआ, औदारिक शरीर की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? भले हम समयों का अंतर देख रहे हैं, परंतु हीनाधिक होती है कि नहीं होती है? तो उसमें उसके आधार से निगोद पुलविया भी कितनी अधिक होगी, देह भी कितने अधिक हो गए, और ऐसे भी रेगुलर भी उसमें भी हीनाधिकता होती रहेगी ना, कितने निकलेंगे कितने नए आएंगे। हाँ देखो, अभी आगे बढ़ते हैं, तीसरी लाइन से पढ़ रहे हैं अभी हम फिर से। सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद सदृश धन वाली वर्गणाएं, यानी जिसमें मिनिमम पॉसिबल वो तो वर्गणा का प्रमाण है, जलस्थल और आकाश में आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती है, वो मिनिमम पॉसिबल है। यानी ऐसे कितने अलग अलग वर्गणाएं हैं विश्व में, परंतु उत्कृष्ट सदृश धन वाली सूक्ष्म निगोद वर्गणाएं वर्तमान काल में आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती हुई महामत्स्य के शरीर में दिखलाई देती है। वो बाकी तो जलथल आकाश सर्वत्र देखा है, और यहाँ पर महामत्स्य के शरीर में बादर नहीं, वो सूक्ष्म ही है, इसीलिए मैंने बार बार मैं कह रही हूँ, वो कहाँ पाए, वो सूक्ष्म है, उसके आधार वाली नहीं है, परंतु वहां पाए जाते, बस इतना ही। अब अजघन्य अनुत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट भी नहीं और जघन्य भी नहीं, सूक्ष्म निगोद वर्गणाएं वर्तमान काल में असंख्यात लोक प्रमाण होती है, परंतु महास्कंद वर्गणा वर्तमान काल में एक ही महास्कंद नाम वाली होती है। ख्याल में, महास्कंद नाम की एक ही वर्गना होगी, क्योंकि एट ए टाइम तो एक ही पूरा स्कंद है ना, भले उसमें परमाणुओं की संख्या ही ना दिखोगी, कभी जगन्य अनंत जगन्य उत्कृष्ट के बीच में जो कुछ होगी होगा तो महास्कंद एक ही। शंका, असंख्यात योजनों का अंतर देकर स्थित हुए पुद्गलों का एकत्व कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न क्यों कहा? हाँ तेजल, असंख्यात योजनों का अंतर कहाँ पाया जाता है? अरे अरे, पृथ्वियों में पूरा लोक प्रमाण एक स्कंध आप बता रहे, और पहली पृथ्वी दूसरी तीसरी, तीसरी से चौथी, असंख्यात योजनों का अंतर है बीच में, और आप कह रहे पूरा एक स्कंद है, ये उनका प्रश्न है। तो कहते हैं नहीं, क्योंकि एक बंधन बद्ध सूक्ष्म पुद्गल स्कंधों से समवेत पुद्गलों का अंतर नहीं पाया जाता। क्या कहना चाहते हैं? ये सूक्ष्म टाइप के पुद्गल है और वो एक स्कंद रूप से बने हैं, वो हमने पहले कहीं पढ़ा था शायद, वो तो पूरा एक सूक्ष्म पृथ्वी का एकों का एक पूरा स्कंद बना हुआ है। ये बादर पृथ्वी का एक, आठ पृथ्वियां भी है और बीच बीच में जो है, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो सर्वत्र है, तो कहते उस सबका मिलकर एक स्कंद पाया जाता है, जैसे हमारा चलना फिरना उसमें उस स्कंद में से हो रहा है कि नहीं। यह नाना श्रेणी की अपेक्षा प्ररूपणा की, क्या कहा? एक श्रेणी में क्या देखा था हमने? एक एक परमाणु से बढ़ते हुए सारी बातें बताई। अभी नाना श्रेणी में क्या देखा? एक एक टाइप की वर्गना इस विश्व में कितनी है, इसकी चर्चा हुई। इस प्रकार वर्गना प्ररूपणा समाप्त हुई। अब वर्गना निरूपणा, जरा पेज 53 निकालिए। ये नीचे जो 75 नंबर का सूत्र है ना, तो वहां देखो वर्गणा द्रव्य समुदाहार का प्रकरण, उसमें 14 अनुयोग द्वार बताए। वर्गणा प्ररूपणा, अभी तक जो हम देख रहे थे वर्गणा प्ररूपणा थी, अब वर्गणा निरूपणा करेंगे। तो हमें तो लगता है प्ररूपणा और निरूपणा में क्या अंतर है, तो देखेंगे अभी पढ़कर, यानी उसके बारे में कुछ विशेष बातें बताएंगे। पहले सूत्र पढ़ते ऊपर, वगणा निरूवणिदाये निरूवणिदाये इमा एय पदेशीय परमाणु पुग्गल दव्व वगणा नाम किम भेदेन किम संघादेन किम भेद संघादेन। ये प्रश्न है कि वर्गणा निरूपणा की अपेक्षा एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा, एक एक सिंगल परमाणुओं को हम एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा, इतना लंबा नाम देते हैं, वो जो है वो, यानी परमाणु जो है वे क्या भेद से होती है, यानी वर्गणा क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है, या क्या भेद संघात से होती है? संघात का अर्थ समझते, अनेक परमाणु जुड़कर जो होता है वो संघात, भेद यानी जो स्कंद है वो टूटकर अलग होना, उसको कहेंगे भेद, और भेद संघात है ने भेद भी और संघात भी एट ए टाइम होगा तो भेद संघात कहेंगे। एक सिंगल परमाणु संघात से उत्पन्न हो सकता है? कभी नहीं होगा, समझ में आई बात? भेद संघात से भी नहीं होगा, भेद से हो सकता है। देखो अब यह पृच्छा सूत्र है, यहाँ तो प्रश्न पूछा गया है, शंकाकार इस प्रश्न पर प्रश्न उठा रहे हैं, यहाँ परमाणु पद का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ लिखा ना एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य, क्योंकि परमाणु को ही बता रहे, फिर दोबारा परमाणु शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि परम सूक्ष्मत्व के अविनाभावी एक प्रदेशी पद के ग्रहण से ही उसकी सिद्धि हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं? पर एक प्रदेशी कह दिया तो उसी से वो परमाणु घटित हो रहा है, फिर दोबारा परमाणु पुद्गल क्यों कहते हैं? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह सब वर्गणाएं परमाणु पुद्गलों से ही उत्पन्न हुई है, क्योंकि स्कंद भी जो बने हैं परमाणुओं से ही बने हैं, परमाणु पुद्गल से ही बना है, इसलिए हर वर्गणा के साथ उन्होंने परमाणु पुद्गल ऐसा शब्द लगाए, परमाणु पुद्गल वर्गणा। फिर वो एक प्रदेशी हो, संख्यात प्रदेशी हो, असंख्यात प्रदेशी हो, अनंत प्रदेशी हो, आगे भी जो प्रत्येक शरीर वर्गणा, हर एक के बाद परमाणु पुद्गल वर्गणा, द्रव्य वर्गणा ऐसे शब्द लगाया था। अतः सब वर्गणाओं की परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा यह संज्ञा है। यानी जो जो हमने नाम देखे थे इतने सारे 23, हर एक के साथ वहां पर उन्होंने परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा ऐसा शब्द लगाया था। तथा उस वर्गणा के एकादि प्रदेश यतः विशेषण है। यानी जो हम कहेंगे एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, ये परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा के विशेषण है, वो वर्गणा को बताने वाले वो शब्द है। अतः एक प्रदेशी और पुद्गल परमाणु, और सॉरी एक प्रदेशी और परमाणु पुद्गल, इन दोनों पदों का ग्रहण करना चाहिए। ये परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा ये शब्द तो सर्वत्र लगाया है और ये उसका विशेषण एक प्रदेशी बताया, इसलिए दोनों ही शब्दों को यहाँ होना जरूरी है। अब ये भेद किसको कहना और संघात वो बता रहे, स्कंधों का विभाग होना भेद है और परमाणु पुद्गलों का समुदाय समागम होना संघात है। समुदाय करके समागम, उसके आपस में जो उसका बंध, एक एक जैसे वस्तु एक स्कंध बनता है। भेद को प्राप्त होकर पुनः समागम होना भेद संघात है, यानी कहीं से छूटे और कहीं में मिले तो वह भेद संघात हो जाता है। यह एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा क्या भेद से उत्पन्न होती है या संघात से उत्पन्न होती है, या क्या भेद संघात से उत्पन्न होती है, इस प्रकार इस सूत्र द्वारा पृच्छा की गई है। अब उसका निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। प्रश्न क्या है पहले ये समझाया। हाँ समझ में आए, भेद से नहीं कि टुकड़ा होकर परमाणु हुआ है, क्या अनेक टुकड़े मिलकर परमाणु बन गया, ये प्रश्न है उनका। अभी उसका उत्तर बताते हैं। वरिल्लीनम दौवाणम भेदेण, ऊपर के द्रव्यों के भेद से उत्पन्न होती है। यानी परमाणु काहे से उत्पन्न होते हैं, तो ऊपर के भेद है ना, द्विप्रदेशी, तीन प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशों में से वो छूट कर निकले हैं, उनके भेद से ये उत्पन्न होती है। होती है स्त्रीलिंग इसलिए क्योंकि वर्गणा की बात चल रही है, यह वर्गणा भेद से उत्पन्न होती है। द्विप्रदेशी आदि उपरिम वर्गणाओं के भेद से ही लगाया, एक प्रदेशी वर्गणा होती है क्योंकि सिंगल परमाणु दो प्रदेशी तीन प्रदेशी में से छूट कर निकला है, क्योंकि सूक्ष्म की स्थूल के भेद से ही उत्पत्ति देखी जाती है। ये सबसे सूक्ष्म है तो वो स्थूल के भेद से उत्पन्न होगा। संघात से और भेद संघात से एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा नहीं होती, क्योंकि इससे नीचे अन्य वर्गणाओं का अभाव है। नीचे का अर्थ होता है जो हम 1, 2, 3, 4 नंबरिंग देंगे, वो तो एक एक परमाणु से बढ़ते हुए जो आगे विकल्प है, तो नीचे के नहीं उससे कम वाले, पर एक सिंगल परमाणु के नीचे कोई वर्गणा ही नहीं है, तो नीचे के संघात से होना ऐसा कह नहीं सकते, ऊपर के भेद से ऐसा कह सकते हैं। इसलिए क्या क्या कहा उसका कारण, इसके नीचे अन्य वर्गणाओं का अभाव है, क्योंकि सबसे मिनिमम पॉसिबल परमाणु को यहाँ ग्रहण किया है। अब 100 नंबर का सूत्र। इमा द्विपदेशीय परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा नाम किम भेदेन किम संघादेन किम भेद संघादेन। यह द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा, यानी दो प्रदेशी दो परमाणुओं का स्कंध है, उसको द्विप्रदेशी कहा, क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है, या क्या भेद संघात से होती है। सुगम है, प्रश्न समझ में आवे ऐसा है, यह सुगम है। उसका उत्तर अब देते हैं। वरिल्लीनम दौवाणम भेदेन हिठिल्लीनम दौवाणम संघादेन सत्थाणेन भेद संघादेन। ऊपर के द्रव्यों के भेद से नीचे के द्रव्यों के संघात से, ऊपर के द्रव्य ने तीन प्रदेशी चार प्रदेशी अनंत प्रदेशी तक, उसके भेद होकर ये द्विप्रदेशी अलग हुआ है, तो ऊपर के वर्गणा के भेद से हुआ, द्रव्यों के नहीं वहाँ के भेद से, और नीचे के द्रव्यों के संघात से। नीचे के द्रव्य क्या है? एक प्रदेशी, दो एक प्रदेशी जुड़ गए और ये एक द्विप्रदेशी हुआ, वो नीचे के वर्गणा के संघात से हुए। तथा स्वस्थान में भेद संघात से होती है। स्वस्थान में भेद संघात समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? एट अ टाइम लेना है। देखो देखो, अभी हम ये दो का उदाहरण है, पर हम स्वस्थान समझाने के लिए बताते आपको कि बूंदी का लाडू बनाते ना आप, तो मान लेंगे 100 बूंदी और 100 बूंदी, यानी 100-100 वाली वो समान संग, वो स्वस्थान है ना उसका, सब में 100-100-100 है। तो हमने क्या किया, 100-100 में से बनाए। ये 100 कैसे बना सकते? तो हमने बहुत पहले 1000 वाला बनाया था, उसमें से निकाल कर 100 बनाए, तो वो भेद से हुआ। या 50-50 वाले दो मिलाकर बनाया 100, तो उसका क्या होगा? संघात। या 100 अलग अलग डिफरेंट को मिलाकर भी हो सकता है, तो सिंगल सिंगल 100 मिलाए, या द्विदीव प्रदेशी 50 मिलाए, उससे सारे भेद संघात से होगा। स्वस्थान में क्या होगा, 100-100 वाले लड्डू है सारे, तो हमने इस 100 में से 50 निकाले, इस 100 में से 50 निकाले और दोनों का उसी समय संघात किया, तो क्या हुआ, स्वस्थान में भेद संघात से। ये द्विप्रदेश है ना, ये भी द्विप्रदेशी, ये भी द्विप्रदेशी, इनमें से एक प्रदेश, इनमें एक भेद हुआ और इन दो का संघात हुआ, ये स्वस्थान में भेद संघात कहते हैं। ख्याल में आई बात? ये देखो, तो ऊपर के द्रव्यों के भेद से, नीचे के द्रव्यों के संघात से, तथा स्वस्थान में भेद संघात से। भेद संघात एक ही समय में होना चाहिए, होती है। अभी 122 पेज पर आना। यतः, यतः का अर्थ होता है क्योंकि, दो एक प्रदेशी परमाणु पुद्गलों के समुदाय समागम। समुदाय समागम में केवल वो तो इकट्ठे हुए ना, वो समागम भी हुआ, उसके उसका बंध भी हुआ है। द्विप्रदेशी वर्गणा होती है, वो प्रदेश हो दिखता है, प्रदेशी वर्गणा होती है, इसलिए यह नीचे की वर्गणाओं के संघात से होती है। ये समझ में आ रही बात? ये भाषा समझो, नीचे की ऊपर की किसको कहना ये समझना है, और भेद संघात किसको कहना ये भी समझ ले, तो ये तो आसान है। ऊपर की वर्गणाओं के भेद से भी होती है। ऊपर की वर्गणाएं कौन सी है? तीन प्रदेशी लेकर ऊपर के जो सब है उसको हम ऊपर की वर्गणाएं कहेंगे। यथा त्रिप्रदेशी वर्गणा में एक परमाणु पुद्गल के विरोधी गुण के उत्पन्न होने से, एक कोई तीन त्रिप्रदेशी स्कंद था, तो उसमें एक परमाणु पुद्गल में विरोधी कोई बात शुरू हो गई, मान लेते ना वो रुक्षत्व का या स्निग्धत्व का कुछ वेरिएशन हो गया, वो गल गया वहां से, ये हो सकता है ना। तो एक पुद्गल परमाणु के विरोधी गुण के उत्पन्न होने से, विरोधी गुण का अर्थ होता है वो पर्याय, ये गुण यानी वो तो विरोधी गुण के पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण से विरोधी क्या उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है। उसमें जो स्निग्धत्व रुक्षत्व के कारण वो जुड़े थे, उसमें कुछ अलग हो गया तो उसमें छूट गया वो। भेद को प्राप्त होने पर द्विप्रदेशी द्रव्य वर्गणा उत्पन्न होती है, यानी तीन में से एक गल गई तो दो रहेगी, वो तो द्विप्रदेशी रह गया। चार प्रदेशी स्कंद से दो परमाणु पुद्गलों के विरोधी गुण के उत्पन्न होने से भेद को प्राप्त होने पर द्विप्रदेशी वर्गणा उत्पन्न होती है। पंच प्रदेशी स्कंद से तीन परमाणु पुद्गलों के भेद को प्राप्त होने पर द्विप्रदेशी वर्गणा उत्पन्न होती है। ये कैसे उत्पन्न हो सकती है उसकी पॉसिबिलिटीज बता रहे। इस प्रकार उपरिम सब वर्गणाओं के भेद से द्विप्रदेशी वर्गणा की उत्पत्ति कहनी चाहिए। यहां से लेकर ऊपर की जितनी है उसमें से एक एक परमाणु छूट, यानी द्विप्रदेशी रह जाएगा, बाकी उसमें से गल जाएगा। त्रिप्रदेशी आदि वर्गणाओं के भेद से द्विप्रदेशी वर्गणा की उत्पत्ति होती है, ऐसा समझकर ऊपर के द्रव्यों के भेद से यह वचन कहा। यह समझ में आई बात? अब एक प्रदेशी दो वर्गणाओं के समुदाय समागम से द्विप्रदेशी वर्गणा उत्पन्न होती है, ये पहली लाइन में बताया था, इसलिए नीचे के द्रव्यों के संघात से यह वचन कहा गया। नीचे के द्रव्यों के नीचे के जो वर्गणाएं हैं उनके समागम से हुए। द्विप्रदेशी दो स्कंध भेद को प्राप्त होकर जब पूर्व संबद्ध परमाणु के साथ या अन्य परमाणु के साथ समागम को प्राप्त होते हैं, तब द्विप्रदेशी वर्गणा स्वस्थान में भेद संघात से उत्पन्न होती है, ऐसा कहा है। ये तो हमने देखा ना लड्डू का उदाहरण, स्वस्थान में भेद भी हुआ और अन्य के साथ वो संघात भी हुआ। शंका, द्विप्रदेशी वर्गणा भेद को प्राप्त होकर एक प्रदेशी वर्गणा होती है, ये शंका क्यों? भेद और संघात दोनों कर रहे ना, तो द्विप्रदेशी का तो एक प्रदेशी हो जाएगा। पुनः उन दो परमाणुओं के समुदाय समागम से उत्पन्न हुई द्विप्रदेशी वर्गणा नीचे के द्रव्यों के संघात से उत्पन्न हुई है, इसलिए स्वस्थान में भेद संघात से द्विप्रदेशी वर्गणा उत्पन्न होती है, ऐसा जो कहा है वह नहीं बनता। क्या कहना चाहते हैं? द्विप्रदेशी दोष है, उसमें सिंगल सिंगल प्रदेश निकला, ये तो भेद हुआ, तो भेद हुआ तो सिंगल परमाणु बने, तो सिंगल परमाणु बने तो सिंगल परमाणु से ये बना है, तो अकेला संघात से कहो, भेद संघात क्यों कह रहे, ये उनका प्रश्न है। प्रश्न समझ में आई बात? यहां इस शंका का परिहार करते हैं, यथा अवयवों का विभाग उत्पन्न होकर वह अवयवों के संयोग का विनाश करता है, अनुत्पन्न होकर नहीं, क्योंकि अहेतुक कार्य की उत्पत्ति होने में विरोध है। इसलिए अवयवों के विभाग के उत्पन्न होने के समय ही संयोग का विनाश होना चाहिए, क्योंकि पूरा पढ़ते फिर देखते इसको, विरोधी गुण की उत्पत्ति होने पर संयोग का अवस्थान होने में विरोध है। यानी वो संघात सॉरी भेद क्यों हुआ? विरोधी गुण उत्पन्न हुआ, इसलिए उसमें से भेद हुआ। यदि कहा जाए कि अवयवों के संयोग के विनाश के समय ही एक प्रदेशी वर्गणा की उत्पत्ति होती है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य को विषय करने वाले विनाश और उत्पत्ति की युगपत वृत्ति होने में विरोध है। यदि विरोध नहीं माना जाता तो जो विनाश है वही उत्पत्ति हो जाएगी और जो उत्पत्ति है वह विनाश हो जाएगा, इसलिए विनाश और उत्पत्ति के व्यवहार में संकर हो जाएगा। परंतु ऐसा है नहीं, जो विनाश है वो उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सांकर्य यानी सांकर्य ने मिला मिल जाना मिक्स होना दोष से रहित होकर व्यवहार उपलब्ध होता है। इसलिए विभाग के समय में परमाणु वर्गणा की उत्पत्ति नहीं होती, उस समय द्विप्रदेशी वर्गणा का भेद ही होता है, यह बात सिद्ध हुई। क्या कहना चाहते हैं? द्विप्रदेश का भेद हुआ, अगर भेद हुआ उसी समय एक प्रदेशी वर्गणा उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं कहेंगे। उनका कहना क्या है कि वो तो विनाश और उत्पत्ति एक ही समय नहीं होगी, एक तो द्विप्रदेशी वर्गणा का विनाश हुआ है, उसी को एक प्रदेशी की उत्पत्ति नहीं कहेंगे हम, ये उनको कहना है। पुनः इन भेदों के प्राप्त हुए संघात से द्विप्रदेशी वर्गणा उत्पन्न होती है, इसलिए स्वस्थान में भेद संघात से जो द्विप्रदेशी वर्गणा की उत्पत्ति हुई है वह पहले के भंगों में अंतर्भाव नहीं प्राप्त होती, यह सिद्ध हुआ। यहाँ क्या कहते हैं? वो भेद होकर उनका संयोग हुआ है, तो कहते कि वहां भेद संघात कह सकते हैं, स्वस्थान में भेद संघात कह सकते हैं, परंतु उसको हम परमाणु हुआ फिर परमाणु से बनी ऐसा उसको नहीं ग्रहण किया है, इसलिए स्वस्थान में भेद संघात वो एक्सेप्टेड है। अथवा दूसरी बात बताते, अथवा यानी दूसरा दलील, द्विप्रदेशी वर्गणा के दो स्कंध भेद को प्राप्त होने के समय में ही परस्पर में समागम को प्राप्त होकर क्रम से द्विप्रदेशी वर्गणाएं उत्पन्न होती है। क्या कहते हैं? उसी समय भेद और संघात भी एक ही समय में, यानी यहाँ से छूटकर उसी समय में दूसरे से बंधा। ये दो दो थे ना, इससे छूटे और ये जुड़े समय एक, तो भेद संगात कहेंगे उसको। यह अर्थपद आगे सर्वत्र कहना चाहिए। जैसे हमने वो लड्डू का उदाहरण देखा था, 100 के हमने 50-50 निकाले, तो 50-50 के लड्डू बना के रखे और बाद में अगर मिलाते तो बात अलग है। ये 50-50 निकाले और उसका लड्डू बनाया, ये समझने के लिए। क्या क्या द्विप्रदेशी वर्गणा, कौन से गुणों की अपेक्षा बता रहे आप? द्विप्रदेशी वर्गणा किसको कहेंगे? दो परमाणुओं का स्कंद। अभी कौन से गुण समान हो गए इसमें, आप ही बोलो, कौन से गुणों की बात कर रहे हैं? वर्ण की, गंध की, आपका क्या कहना है? दो का डिफरेंस होता तो 10 और 12 का हो सकता है, और 16 और 18 का होगा, हो सकता है। उसके स्पर्श रस गंध वर्ण अलग अलग हो सकते हैं। फक्त दो प्रदेशी वर्गणा है, बस इतना ही बतना है। उनके स्पर्श रस गंध वर्ण सब अलग अलग हो गए। अब त्रिप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा, चार ऊपर रह गया, सॉरी, त्रिपदेशीय परमाणु पोगल दव वगणा, चदु पंच छ सत्त अठ नव दस, संखेज असंखेज, परित्त अपरित्त, अनंत अनंतानंत पदेशीय परमाणु पोगल दव वगणा नाम किम भेदेन किम संघादेन किम भेद संघादेन। अब ये तो बीच वाली सभी द्विप्रदेशी तो बता दिए उन्होंने, अब त्रिप्रदेशी से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत तक गए, अनंतानंत तक। जब तक वो आहार वर्गणा नहीं प्राप्त होगी तब तक के सारे लेंगे। अभी इसका हिंदी, त्रिप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा, चार प्रदेशी, पांच प्रदेशी, छह प्रदेशी, सात प्रदेशी, आठ प्रदेशी, नौ प्रदेशी, दस प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, उत्कृष्ट संख्यात तक गिनना, फिर असंख्यात प्रदेशी, परित प्रदेशी, अपरित प्रदेशी। वो तो परिता संख्या, तो जो परित नहीं है ऊपर के सब भेद, असंख्यात के सब भेद ले लेना उसमें। अनंत प्रदेशी और अनंतानंत प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा, ये जो सारी द्रव्य वर्गणा एक एक प्रदेश से बढ़ती हुई जितनी सारी है, वो प्रश्न क्या है, क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है, या क्या भेद संघात से होती है? तेजल क्या होता होगा? तीनों तीनों, क्योंकि ऊपर के भेद से, नीचे के संघात से, और स्वस्थान में भेद संघात होगा ना ऐसा। यह पृच्छा सूत्र सुगम है। अब इसका उत्तर देते हैं, उवरिल्लीनम दव्वाणम भेदेन, हेठिल्लीनम दव्वाणम संघादेन, सत्थानेन भेद संघादेन। ऊपर के द्रव्यों के भेद से, ऊपर के द्रव्य ने ऊपर की वर्गणा है, नीचे के द्रव्यों के संघात से, और स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है। यह सूत्र भी सुगम है क्योंकि पहले व्याख्यान कर आए हैं। ये जो द्विप्रदेशी में जैसा समझाया वैसे यहाँ समझना। फिर से देखो, भेद यानी टुकड़ा होना। अभी तीन प्रदेशी है तो 10 प्रदेशी का टुकड़ा होकर तीन प्रदेशी मिल सकता है हमें, और संघात यानी मिलकर, कैसे मिलेंगे? तीन सिंगल परमाणु मिलकर भी हो सकता है, या दो प्रदेशी और एक संप्रदेशी का संघात होकर भी तीन प्रदेशी हो सकता है, यानी नीचे के जो है ना उनके संघात से। अभी कहीं पर जाओ, आप असंख्यात वाली बात है, असंख्यात परमाणुओं का स्कंद हुआ है, वो कैसे मिला? वो ऊपर के उसके बड़े असंख्यात या अनंत प्रदेशी वाला खंड होकर वो असंख्यात प्रदेशी होगा, या नीचे के जो कुछ है अनेक उसके संघात होकर हो सकता है। हाँ, यानी इसको कहते हैं ऊपर के द्रव्यों के भेद से, नीचे के द्रव्यों के संघात से और स्वस्थान में भेद संघात से। समझ में आई बात? जब भेद संघात याद होता है ना, वो बूंदी का लाडू बनाना और सबको खिलाना। देखो यह सूत्र भी सुगम है क्योंकि पहले व्याख्यान कर आए हैं। शंका, नीचे की और ऊपर की वर्गणाओं के भेद संघात से विवक्षित वर्गणाओं की उत्पत्ति क्यों नहीं कहते? देखो क्या प्रश्न क्या है। भेद संघात केवल हमने स्वस्थान में देखा तो कहते कि ऊपर के भेद से और नीचे के उसका भी भेद हुआ। जैसे मान लेते हैं दस प्रदेशी हमको वर्गणा देखनी है, तो दस प्रदेशी है तो नीचे से छह प्रदेशी लिए और ऊपर का भेद होकर चार प्रदेशी उसमें से लिए और उसका संघात किया, तो भेद संघात दोनों ऐसा क्यों नहीं कहते? ऊपर और नीचे के भेद संघात ये प्रश्न क्यों, ये क्यों नहीं लिया? केवल स्वस्थान में ही भेद संघात क्यों लिए, ये उनका प्रश्न है। देखो नीचे की और ऊपर, फिर शंका पड़ती हूं मैं, नीचे की और ऊपर की वर्गणाओं के भेद संघात से विवक्षित वर्गणाओं की उत्पत्ति क्यों नहीं करते? क्योंकि भेद के समय विनाश को छोड़कर उत्पत्ति के अभाव के प्रति कोई विशेषता नहीं है। जैसे वहां प्रगटित किया है ऐसे यहाँ प्रगटित करो। समाधान, नहीं, क्योंकि वहां पर इस प्रकार के नए का अभाव है। अथवा दूसरी पद्धति से बताते हैं, भेद संघात का इस प्रकार का अर्थ कहना चाहिए, यथा भेद और संघात दोनों का संयोग स्वस्थान कहलाता है। उसके विवक्षित होने पर ऊपर के, नीचे के और विवक्षित द्रव्यों के भेदपूर्वक संघात से विवक्षित वर्गणा की उत्पत्ति देखी जाती है। इसे स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से उत्पत्ति कहते हैं। यह कहना चाहते हैं, पहले तो कहा कि वो स्वस्थान में ही लेना, दूसरी बात उसकी भी बात बताई कि स्वस्थान कहते ही उसको है कि भले ऊपर का भेद और नीचे का जो कुछ संघात मिलकर भी ये हो सकता है एट ए टाइम, उसको भी स्वस्थान ही कहने में आएगा, ये उनका कहना है। हाँ, उसी को स्वस्थान कहकर उसको उसका स्वीकार भी किया है, अथवा कह के उसका स्वीकार भी किया है। शंका, सभी परमाणु संघात भेद पूर्वक ही होता है, इसलिए सभी वर्गणाओं की उत्पत्ति भेद संघात से क्यों नहीं कहते? क्या कहते हैं? सभी परमाणुओं का जो मिलना होता है ना, पहले परमाणु छुप जाते हैं और फिर बाद में उनका होता है, क्या क्या सभी परमाणु संघात, परमाणु उनका जो मिलना होता है वो परमाणु छूट जाते तभी उनके फिर मिलते हैं, तो छूटकर मिलते हैं तो सभी वर्गणाएं भेद संघात से हुई ऐसा क्यों नहीं कहते? द्विप्रदेशी से लेकर सब। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि भेद से अनंतर जो संघात होता है उसे भेद संघात कहते हैं। जो अंतर से होता है उसकी यह संज्ञा नहीं है। क्या कहता? देखो परमाणु छूटकर सिंगल परमाणु रूप से रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? के ताबड़ तब उसका संघात हो जाता है तो नहीं है, तो कालांतर से उसका संघात हुआ उसको भेद संघात नहीं कहेंगे। एक ही समय में भेद और भेद होकर संघात होता है उसको भेद संघात कहेंगे। इसलिए जो परमाणु से संघात हुआ वो भेद और संघात दोनों उसमें नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भेद हो सकता है बहुत पहले हुआ है और अभी उसका संघात हुआ है। इसलिए क्या कहते, जो अंतर से होता है यानी भेद होकर कुछ अंतर पड़ा और बाद में संघात हुआ, यह अंतर से हुआ, उसको भेद संघात यह संज्ञा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अव्यवस्था का प्रसंग आता है, क्योंकि भेद कब हुआ और संघात कब हुआ तो अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए सब वर्गणाओं की उत्पत्ति भेद संघात से नहीं होती। यहां तो इन जनरल बात बताई, यहां तक कहां तक? अनंतानंत पर प्रदेशी वर्गणा तक। अब आगे जो हमने देखे थे ना, कौन से आहार वर्गणा वगैरह, उसकी बात करेंगे। आहार अगहण, तेया अगहण, भाषा अगहण, मन अगहण, कम्मय्य ध्वखंद दव वगणा नाम किम भेदेन किम संघादेन किम भेद संघादेन। अभी आहार द्रव्य वर्गणा, ये जो पांच जो जीव के ग्रहण योग्य है और उसके बीच बीच में जो अग्रहण है, इनकी बात यहाँ पूछ रहे हैं। और कारमान द्रव्य वर्गणा के बाद ध्रुव स्कंद को भी यहाँ लिया है। तो आहार द्रव्य वर्गणा, अग्रहण द्रव्य वर्गणा, तेजस द्रव्य वर्गणा, अग्रहण द्रव्य वर्गणा, भाषा द्रव्य वर्गणा, अग्रहण द्रव्य वर्गणा, मनोद्रव्य वर्गणा, अग्रहण द्रव्य वर्गणा, कारमान द्रव्य वर्गणा और ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा, ये 10 क्रिया एक साथ क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है या क्या भेद संघात से होती है, सुगम है। ऊपर पढ़ते, उवरिल्लीनम दव्वाणम भेदेन, हिट्ठिल्लीनम दव्वाणम संघादेन, सत्थानेन भेद संघादेन। ऊपर के द्रव्यों के भेद से, नीचे के द्रव्यों के संघात से और स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है, सुगम है। देखो ये प्रश्न होता है ना कि ये कारमान वर्गणा जो कर्म जो छूट जाते, कर्म परमाणु, पहले कारमान वर्गणा से कर्म बना, कर्म खिर गया, तो खिर गया तो उसका परमाणु होगा कि नहीं होगा, कि कारमान वर्गणा रूप से ही कायम रहेगी, इसे तो सिद्ध होता है ना। परमाणु भी उसमें से छूट सकते हैं कि नहीं अलग से, और उसके अन्य कुछ भी स्कंद हो सकते हैं नीचे के, हाँ कौन से किस रूप नहीं होगे वो चर्चा होगी अभी बाद में, परंतु यहाँ जो प्रश्न था, जो शरीर के परमाणु छोड़ गए, अभी छूट गए तो उसमें से सिंगल सिंगल जुदे पड़ जाएंगे, उसका कोई भी स्कंद हो सकते हैं, किसी भी स्कंद में मिल सकते हैं वो। असंख्यात लोक प्रमाण है, लोक प्रमाण पूरे औदारिक शरीर के परमाणु जो हमने देखा ना, परिशातन संघातन उसकी बात की थी हमने, जो छूटे हुए परमाणु है या तो वहां विश्वसोपचय से पड़े रहेंगे या पूरे लोक में कहीं पर भी बिखर जाएंगे, ये हमने देखा था। परंतु जो लेते हुए कहाँ से लेते हैं, वो अपने ही जीव के जो प्रदेश है उसी आकाश प्रदेश में से उनका ग्रहण होता है, ग्रहण कहीं बाहर से नहीं होता है, पर छूटने वाले पूरे लोक में कहीं पर भी फैल सकते हैं। ये उसमें हमने विशेषता की कि जो द्रव्य परावर्तन आदि देखते हैं वो कहीं पर भी लोक के अयन में चला जाएगा, और वे ही परमाणु उपलब्ध होने चाहिए ना फिर ग्रहण करने के लिए, यानी वो रेयर रेयर बात बन जाती है। तो हमने 105 नंबर का पढ़ा, यानी ऊपर के द्रव्यों के भेद से, नीचे के संघात से और स्वस्थान में भेद संघात से, ये सुगम है। 106 नंबर, ध्रुवखंड दव्व वग्गणानम उवरी सांतर निरंतर दव्व वग्गणानाम किम भेदेन किम संघादेन किम भेद संघादेन। ध्रुवस्कंद द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है या क्या भेद संघात से होती है, यह सुगम है। इति सत्थानेन भेद संघादेन, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है। यहाँ ऐसा नहीं कह कि ऊपर के उस भेद से होती है, क्योंकि इसके ऊपर कौन कौन से है, ये तो शून्य वर्गणा में से क्या होगा भेद। अभी दूसरी बात क्या, कारमान वर्गणा नीचे की है, प्रत्येक शरीर वर्गणा है, बादर निगोद वर्गणा है और सूक्ष्म निगोद वर्गणा है, वो तो सचित्त में से अचित्त नहीं होगी, उसका टुकड़ा होकर इस तरह से, यानी वर्गणा के रहते हुए, उसमें रहते हुए ऐसा है। वो वर्गणा का अर्थ क्या है, वहां कोई जीव है, उसका प्रत्येक शरीर है और उसके 6 पुंज है, तो उसका टुकड़ा हो जाएगा, तो ये तो वो प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं कहेंगे ना उसको, समझ में आती है ना बात। देखो नाखून आपने तोड़ दिए, ये बादर, यह शरीर जब था तो बादर निगोद वर्गणा कहते थे, अब नाखून तोड़ दिया तो उसको हम, वो वहां तो मूल जीव तो नहीं रहा वहां पर, समझ में आए थे ना, उसको हम प्रत्येक शरीर वर्गणा कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, या बादर निगोद वर्गणा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, यानी उसका शरीर का कुछ अंग या परमाणु छूटकर निकल गए, तो उसको वो जो वर्गणा छूटी है उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं कहेंगे हम, प्रत्येक शरीर वर्गना कब कहेंगे, वहाँ वो जीव भी है, उसका प्रत्येक शरीर भी है, उसके छह पुंज भी है, तब उसको प्रत्येक शरीर वर्गना कहेंगे। तो उसका टुकड़ा हो सकता है क्या? वो प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक शरीर वर्गना के चार भेद हुए ऐसा कहेंगे क्या हम? समझ में आते हैं बात? यानी मान लेते आपने कहा वो अग्नि का एक ही बड़ी एक स्कंध हो जाता है और उसमें से चार अलग अलग पार्ट हुए, पर वो प्रत्येक शरीर वर्गना ही रहेगी, वो कहाँ नीचे की वर्गना का ऐसे कहेंगे उसको? अग्नि का एक जीवन के हमने वो पुंज के चार समूह के मान लेते, वो प्रत्येक शरीर वर्गना की प्रत्येक शरीर वर्गना ही रही, भेद से भी वही रही, परंतु वो प्रत्येक शरीर वर्गना ही कहेंगे उसको। वो छोटा सा टुकड़ा प्रत्येक शरीर वर्गना ही कहलाएगा, जैसे अग्नि की एक चिंगारी भी जो है वो प्रत्येक शरीर वर्गना कहलाएगी, उसका भेद से प्रत्येक शरीर वर्गना ही होगी ना, क्योंकि वो प्रत्येक शरीर वाले जीव जुदे जुदे है उसमें। परंतु उस उसका कोई पार्ट, शरीर का कोई पार्ट छूट गया तो उसको हम प्रत्येक शरीर वर्गना नहीं कहेंगे। कुछ ख्याल में आता है मैं क्या कहना चाहती हूँ? इसलिए ये जो है शांत निरंतर, वो ऊपर के शरीर, प्रत्येक शरीर वर्गना, बादर शरीर वर्गना, ये सूक्ष्म शरीर वर्गना, इसका टुकड़ा होकर ये वर्गना बनी ऐसा नहीं कह सकते हम, ये कहना चाहते हैं। समझ में आई बात? फिर से यहाँ लिखा ना, ध्रुव स्कंद द्रव्यना के ऊपर सांतर निरंतर द्रव्य वर्गना क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है? ध्रुव स्कंद तक हमने देखे थे कि ऊपर के, हाँ, भेद से भी होती है, संघात से भी होती है, परंतु सांतर निरंतर वाली जो है वो तो स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है, ये बताया उन्होंने। ने आगे में बताएंगे उसके, नीचे के द्रव्यों के संघात से स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है, ऊपर के द्रव्यों के भेद से भी बताया, कितने ही पोथियों में पाठ है आगे बताने वाले हैं, यानी ऐसा भी पाठ है कहीं कहीं पर, उसके लिए बाद में शंका समाधान होगा, सचित्त से अचित्त कैसे होगी, तो उसमें से सचित्त में से वो निकल कर फिर अचित्त होकर फिर इस रूप हो जाएगी, ये तो आगे आने वाला पाठ है। मूल में तो उन्होंने केवल स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से इतनी बात बताई, यथा ऊपर बताए ना, सत्था ने ना भेद संघा देना, उसका स्पष्टीकरण लास्ट लाइन, प्रत्येक शरीर बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं के भेद से यह वर्गणा नहीं होती, क्योंकि सचित्त वर्गणाओं का अचित्त वर्गना रूप से परिणमन होने में विरोध है। वो सचित्त ने उसके वहां जीव भी पाया जाता है ना, और उससे निकल जाएंगे तो जीव से रहित हो जाएगी, इसलिए उसको उस वर्गना का नाम नहीं है। अब जब कहेंगे भेद से होती है तो उसमें से छूटकर वो अन्य, हाँ, पर उसको वो हम सचित्त नहीं कहेंगे, उससे जीव, जीव वहां रह गया और उससे कुछ परमाणु निकल आए। समझ में आई बात कुछ? हाँ हाँ, उसके तब नहीं सचित्त कहेंगे उसको, क्योंकि जीव तो रह गया ना वहां पर, यानी उसमें जीव नहीं आया, उसमें उसमें परमाणु आए पर उसमें उसके साथ वो जीव नहीं रहे हैं, और वो प्रत्येक छूट, अभी शरीर का अंग छूट गया, कुछ छूट गया, जब बाल काट गए वो तो सचित्त वर्गना नहीं रही ना, अभी काटे हुए बाल में सचित्त कहाँ है? समझ में आती है ना, अभी उसका जो कुछ परिणमन होना है वो हो जाएगा, उस अपेक्षा से कहीं पर उसका स्वीकार भी होगा, वो तो बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या कहते हैं, सचित्त वर्गणाओं का, जो काटे तो उसको हम सचित्त वर्गणा नहीं कहेंगे, बाल काट गए तो उसको हम प्रत्येक शरीर वर्गणा तो नहीं कहेंगे, अचित्त वर्गणा रूप से परिणमन होने में विरोध है। यदि कहा जाए, ऐसा कोई कहता है दलील कि सचित्त वर्गणा के कर्म और नौकर्म स्कंधों के उससे अलग होकर सांतर निरंतर वर्गना रूप से परिणत होने पर उनके भेद से इस वर्गना की उत्पत्ति होती है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनसे अलग होने के समय ही उनसे अलग हुए स्कंधों को सचित्त वर्गना होने में विरोध आता है। वही तो कह रहे ना, जब उनसे अलग हो गए हैं, उनके कर्म या नो कर्म, उनके कर्म या नो कर्म, यानी उस जीव ने जो शरीर कर्म के परमाणु छोड़े हैं, शरीर के परमाणु छोड़े, हमने उसको बाल काटे कहा, तो उसको सचित्त वर्गना तो नहीं कहेंगे, वो भी उससे जीव से जुदे हुए, तो उसको सचित्त मानने में विरोध है, बस इतना कहना है। यहाँ लिखा ना, उनके अलग होने के समय ही उनसे अलग हुए स्कंधों को सचित्त वर्गना होने में विरोध है, उसमें से अलग हुए तो उसको हम सचित्त वर्गना नाम नहीं देंगे। महास्कंध के भेद से इस वर्गना की उत्पत्ति होती है, यह कहना भी ठीक नहीं है। कोई कहेगा सचित्त की बात छोड़ो, एकदम लास्ट वाला महास्कंध है ना, वो तो अचित्त है, उससे इसकी उत्पत्ति होती कह दो, तो कहते हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि महास्कंध से अलग हुए स्कंध, यतः महास्कंध के भेद से अलग हुए हैं, अतः उनकी महास्कंध संज्ञा नहीं हो सकती। क्या कहते हैं, परमाणु भले वही हो, उसको हम महास्कंध नहीं कहेंगे, महास्कंध उसी को कहेंगे, सबका मिलकर जो लोक प्रमाण एक स्कंध होता है, उसी का नाम महास्कंध है। इसलिए उनका उससे भेद नहीं बन सकता। इस नये का अवलंबन करने पर ऊपर की वर्गणाओं के भेद से यह वर्गणा नहीं होती है, यह कहा गया है। एक तो बात यह, परंतु अभी दूसरे नये से बताते, द्रव्यार्थिक नये का अवलंबन करने पर ऊपर की वर्गणाओं के भेद से भी यह वर्गणा होती है। देखो दो दो अपेक्षा दो नये से बता रहे, ध्रुव स्कंध आदि के संघात से सांतर निरंतर वर्गणा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन लिया गया है। देखो फिर से, पहले तो बताया ऊपर सचित्त वर्गणा है और महास्कंध है, उनसे तो ये भेद से नहीं होती। दूसरी बात होते है, ऊपर के भेद से होती है, ये द्रव्यार्थिक नय का कथन कर रहे हैं। द्रव्यार्थिक क्यों, कि वो पहले पर्याय थी, परंतु परमाणु वही उनसे बना है, इसलिए उसको स्वीकार है। अब दूसरी बात क्या बताते हैं, द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करेंगे तो ध्रुव स्कंध आदि के संघात से ये नहीं हो सकती, यानी अलग अलग नयों से अलग अलग बात बता रहे हैं, क्योंकि यहां द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन लिया गया है। सांतर निरंतर वर्गणा एक ही है, उस रूप से ध्रुव स्कंध वर्गणा आदि का अनंतर ही परिणाम का अभाव है। परंतु अब ये तो द्रव्यार्थिक नय की कोई बात बताए, पर्यायार्थिक नय का अवलंबन लेने पर नीचे की वर्गणाओं के संघात से भी यह वर्गणा होती है, क्योंकि उत्कृष्ट ध्रुव स्कंध वर्गणा में एक आदि परमाणु का समागम होने पर, नीचे की परमाणु में जो स्कंध था उसका, उसमें एक परमाणु बढ़ गया, सांतर निरंतर वर्गणा की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं है। यह विपरीत कल्पना भी नहीं है, यानी केवल कल्पना है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर सचित्त वर्गणाओं की, सचित्त वर्गणा स्थानों की अनुत्पत्ति का प्रसंग आता है। ये सचित्त वर्गणा ने आगे की तीन, प्रत्येक शरीर, बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद, तो उसमें तो अनेक परमाणु आकर उसके साथ जुड़ते हैं, है ना? सांतर निरंतर वर्गणा का दूसरे प्रकार से परिणमन नहीं होता, यह कहना भी ठीक नहीं है। क्या कहते हैं, सांतर निरंतर वर्गणा भी अन्य रूप से परिणमित होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ऐसा होने पर अगर दूसरे प्रकार से परिणमन नहीं होता, ऐसा अगर हम कहेंगे तो ध्रुव शून्य वर्गणाओं के अनंत होने का प्रसंग आता है। देखो सांतर निरंतर वर्गणा किसको कहेंगे, सांतर निरंतर यानी कुछ परमाणुओं का जो रेंज है उसमें, वहां से वहां तक रेंज है, बीच में कुछ नहीं है, फिर रेंज है, फिर नहीं है, इसको सांतर निरंतर कहते हैं, पर वो फिक्स नहीं है। वो जो सांतर निरंतर में जो जो जिसमें वो बीच में गैप है वो कायम के लिए गैप नहीं होती। अगर वो कायम गैप होगी तो उसको भी ध्रुव शून्य मानेंगे, और तो ऐसे ध्रुव शून्य भी अनंत हो जाएंगे, ये उनका कहना है। देखो शांत निरंतर का अर्थ क्या है, इतने ये यहाँ से लेकर इतने परमाणुओं का ग्रुप है, फिर बीच में गैप है, फिर यहाँ से, फिर परंतु वो गैप हमेशा गैप ही नहीं रहेगी, वो कहीं कहीं यहाँ गैप होगा वहाँ पर परमाणु होगा, कहीं इस तरह से है वो सारे। अगर वो फिक्स गैप मानेंगे तो वो ध्रुव शून्य हो जाएगी, तो ध्रुव शून्य अनंत हो जाएगी, ये कहना है, ख्याल में है ना। और अलग अलग अंतर में जो अंतर पड़ता है और जहाँ अंतर नहीं है उसको अलग अलग वर्गणाओं के नाम देने पड़ेंगे, और ये सब मिलकर एक सांतर निरंतर वर्गणा है। समझ में आती मैम? देखो देखो ये सांतर निरंतर किसको कहा, नीचे हमने देखा नीचे यानी ध्रुव स्कंध है, ध्रुव स्कंध की जो कुछ संख्या है मान लेते हैं 1000 परमाणुओं तक उत्कृष्ट ध्रुव स्कंध है, 1001 परमाणुओं से सांतर निरंतर शुरू हुआ, तो 1001 से लेकर 1010 तक अभी परमाणु है, फिर बीच में कुछ गैप है, और फिर वहां तो 1050 से लेकर कुछ परमाणु है, फिर गैप है, फिर है, फिर है, इस तरह से। अब ये जितने गैप है वो कायम के लिए गैप नहीं है, अगर कायम गैप हो गए तो इसको ध्रुव शून्य कहना पड़ता, कभी कभी यहाँ परमाणु हो गए परंतु यहाँ नहीं हो गए, इससे वो तो गैप ऐसी उलट पुलट होती रहेगी। ये सब मिलकर एक ही वर्गणा है और सबका नाम है सांतर निरंतर, सांतर निरंतर अनेक नहीं है, ख्याल में उनको क्या कहना है। देखो परमानेंट नहीं, बराबर, इसलिए कहा क्या कहा सांतर निरंतर वर्गणा एक ही है, मिला मधे बीच में, उस रूप से ध्रुव स्कंध वर्गणा आदि का अनंतर ही परिणाम का अभाव है। परंतु मैं फिर पढ़ रही हूँ नीचे से 3, 3, 6, 2, 8 लाइन, पर्यायार्थिक नय का अवलंबन लेने पर नंबर ऑफ परमाणुओं की अपेक्षा बात करेंगे तो नीचे की वर्गणाओं के संघात से भी यह वर्गणा होती है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ परमाणुओं को हमको देखना है, बस इतना है। क्योंकि उत्कृष्ट ध्रुव स्कंध वर्गणा में हमने 1000 माना था समझाने के लिए, एक आदि परमाणु का समागम होने पर सांतर निरंतर वर्गणा की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हमने वहां 1001, 1002 जब शब्द देखे थे तो उसमें उत्पत्ति हो सकती है, और ये विपरीतपना भी नहीं है, कल्पना नहीं है, क्योंकि ऊपर की जो वर्गणाएं हैं कौन सी सचित्त भी, वहां पर भी जीव अनेक परमाणुओं को तो ग्रहण ही कर रहे हैं, शरीर के परमाणुओं को, और एक एक परमाणु के भेद से हमने विकल्प देखे थे, इसलिए ये हो सकता है। तो ये विपरीत कल्पना है, क्योंकि ऐसा मानने पर सचित्त वर्गणा स्थानों की अनुत्पत्ति का प्रसंग आता है। वर्गणा स्थान किसको कहा, एक एक परमाणु से बढ़ते हुए हमने विश्वसोप से बढ़ाया, फिर अवधारिक शरीर का परमाणु बढ़ाया, फिर इस तरह से एक एक परमाणु के बढ़ते हुए जो स्थान देखे है तो वो अलग अलग परमाणु को ग्रहण करने पर ही होता है, इसलिए वो बात बन सकती है। सांतर निरंतर वर्गणा का नीचे से चौथी लाइन, दूसरे प्रकार से परिणमन नहीं होता यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर ध्रुव शून्य वर्गणाओं के अनंत होने का प्रसंग आता है। ये जो बीच बीच में जो गैप है वो कायम फिक्स होगी, परमानेंट होगी, ऐसा मानना पड़ेगा। केवल स्वस्थान में ही परिणमन होता यह कहना भी ठीक नहीं है। क्या कहते हैं, सांतर निरंतर बदलकर स्वस्थान सांतर निरंतर ही होती है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जगन्य वर्गणा से एक परमाणु अधिक वर्गणा की उत्पत्ति होने में विरोध आता है। यह बात क्या कहना चाहते हैं, हमने जगन्य वर्गणा मान ली ना, हमने 1000 मानी थी ध्रुव स्कंध की और इसकी 1001 मानी थी, तो 1001 है वो सांतर निरंतर से ही उत्मान लेते ना, 1001 से लेकर उसकी रेंज 5000 तक होती है, तो 1001 की उत्पत्ति कैसे होगी, क्योंकि भेद और संगत ऐसे होने चाहिए ना, तो सांतर निरंतर से ही सांतर निरंतर की उत्पत्ति होती है, मानने में विरोध आता है। क्योंकि एक परमाणु अधिक उसकी उत्पत्ति होनी चाहिए, उसके साथ विरोध आता है। दूसरे सांतर निरंतर वर्गणा का अभाव भी प्राप्त होता है, इसलिए स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से ही यह वर्गणा होती है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, भेद भी और संगत भी दोनों एट ए टाइम लिए उसमें से। अथवा अभी अथवा करके दूसरा भी स्वीकार है, ऊपर की वर्गणाएं टूट कर ध्रुव स्कंध आदि रूप से ही उनका पतन होता है क्योंकि ऐसा स्वभाव है। देखो यहाँ क्या कह के ऊपर की वर्गणाएं, ये सांतर निरंतर के ऊपर की वर्गणाएं टूट कर, वो सांतर निरंतर नहीं होती, ध्रुव स्कंध आदि नीचे की वर्गणाएं होती, ऐसा उनका कहना है। तथा ध्रुव स्कंध आदि नीचे की वर्गणाएं स्वस्थान में ही समागम को प्राप्त होती है, अथवा ऊपर की वर्गणाओं के साथ समागम को प्राप्त होती है क्योंकि ऐसा स्वभाव है। परंतु सांतर निरंतर वर्गणा स्वस्थान में ही भेद से, संघात से या तदुभय से परिणमन करती है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए भेद संघात से ऐसा कहा है। यानी भेद से भी, संघात से भी और तदुभय से भी, यानी सांतर निरंतर वर्गणा स्वस्थान में उसका परिणमन हो रहा है, बस इतना उनका कहना है। अब जो दूसरा मत है उसको भी यहाँ देख रहे हैं कि उवरिल्यम दौवाणम भेदेन हेठिल्लिनम दौवाणम संघादेन सत्थानेन भेद संघादेन। ऊपर के द्रव्यों के भेद से, नीचे के द्रव्यों के संघात से और, ये और हुआ, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है। पहले में पहले उन्होंने बिल्कुल फिक्स बता दिया, अब कहते हैं कितने ही सूत्र पोथियों में यह पाठ है। इस सूत्र की व्याख्या करते समय जिस प्रकार ध्रुव स्कंध वर्गणा की तीन प्रकार से उत्पत्ति कही है, कौन सी, भेद से, संघात से और भेद संघात से, उसी प्रकार यहाँ भी कहनी चाहिए क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। यानी कितने आचार्यों का इस यानी सूत्र पाठ में इसका भी स्वीकार है। अब इस पर शंकाकार पूछते हैं, जो पहले बताया था ना 126 पेज पर पहली लाइन में कि सचित्त वर्गणाओं का अचित्त वर्गणा रूप से परिणमन होने में विरोध है, अब यही बात पकड़कर शंकाकार पूछ रहे हैं सचित्त वर्गणा या महास्कंध वर्गणा सांतर निरंतर वर्गणा रूप से कैसे परिणमन करती है, उसका समाधान। अब ये जो दूसरा पाठ है उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया, तो कहते क्योंकि उनके भेद द्वारा आए हुए स्कंधों का सांतर निरंतर वर्गणा रूप से परिणमन पाया जाता है, क्योंकि जो भेद हुआ तब उसको सचित्त रूप से नहीं रही वो, अभी वो सांतर निरंतर रूप से, ये ऐसा उसका स्वीकार करना चाहिए, यानी उसका वो नाम नहीं रहेगा। आगे देखते हैं, सांतर निरंतर दव्य वग्गणानम उवरी पत्ते शरीर दव्य वग्गणानाम किम भेदेन किम संघादेन किम भेद संघादेन। ये बीच में किसको छोड़ा प्रेरणा बेन? हाँ, सांतर निरंतर के बाद किसका नाम था? ध्रुव शून्य का था, वो तो है ही नहीं ना, तो वो उत्पन्न होती कहने की कोई बात ही नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है उसको कैसे उत्पन्न होती वो सवाल है, चार ध्रुव शून्य वर्गणा के बारे में कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए पूछा क्या, सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा क्या भेद से होती है, क्या संघात से होती है, या क्या भेद संघात से होती है? हाँ पढ़ा, अब उसका उत्तर 128 पेज पर, यह सूत्र सुगम है। कहते सत्थानेन भेद संघादेन, स्वस्थान की अपेक्षा भेद संघात से होती है, अब उसको बताएंगे। परमाणु वर्गणा से लेकर, यानी एक सिंगल प्रदेशी से लेकर सांतर निरंतर उत्कृष्ट वर्गणा तक, इन वर्गणाओं के समुदाय समागम से प्रत्येक शरीर वर्गणा उतना ही उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्कृष्ट सांतर निरंतर वर्गणाओं का अपने स्वरूप को छोड़कर एक अधिक आदि उपरिम वर्गणा रूप से परिणमन करने की शक्ति का अभाव है। क्या कहते हैं, सांतर वर्गणा जो उसमें एक मिलाएंगे तो ध्रुव शून्य है, वो ऐसे तो है ही नहीं है, तो वो ऊपर की वर्गणा रूप से परिणमन नहीं कर सकती। शंका, आहार द्रव्य वर्गणा, तेजस द्रव्य शरीर वर्ग, तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा, कार्मण शरीर द्रव्य वर्गणा के, पुद्गल स्कंधों के, योग और कषाय के वश से प्रत्येक वर्गणा रूप से बंध को प्राप्त होने पर उनसे अन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा की उत्पत्ति होती है। अतः नीचे के द्रव्यों के संघात से प्रत्येक शरीर वर्गणा की उत्पत्ति क्यों नहीं कही जाती? प्रश्न समझ में आता है? फिर से, प्रत्येक शरीर वर्गणा किसको कहेंगे? प्रत्येक शरीर जो जीव जीव है उसके अपने छह पुंज है ना, उसको सबको मिलाकर जो स्कंद होता है कौन सा? औदारिक हो गया, वैकरिक हो, औदारिक शरीर है हम वैकरिक भी ले सकते, तेजस और कारमाण उनके विश्रसोपचय, इन सबका मिलकर जो एक पुंज है उसको प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा कहते हैं। वो पुंज कहाँ से आया है? तो योग के कारण शरीर के परमाणुओं को ग्रहण किया है, कर्म को ग्रहण किया है, तेजस को ग्रहण किया है, तो उसने तेजस वर्गणा को भी ग्रहण किया, आहार वर्गणा को भी ग्रहण किया, कारमाण वर्गणा को भी ग्रहण किया कि नहीं किया? इसलिए प्रश्न क्या है, इनको ग्रहण करके उनके समुदाय से, समुदाय समागम से प्रत्येक शरीर वर्गणा हुई है ऐसा क्यों नहीं कहते? ये उनका प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा समझ में, तो उसका उत्तर समाधान समझ में आ सकता है। फिर मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, आहार द्रव्य वर्गणा, तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा और कार्मण शरीर द्रव्य वर्गणा के पुद्गल स्कंधों के योग और कषाय के वश से, हमने देखा ना बंध होता है वहां योग भी है और कषाय भी है, उसके वश से प्रत्येक वर्गणा रूप से बंध को प्राप्त होने पर, और वो हमने देखा ना इतने परमाणु ग्रहण करके वो तो प्रत्येक शरीर वर्गणा रूप से हो गई उसके, क्योंकि उसके पुंज में बढ़ोतरी होगी तो उसको पुंज कहेंगे, वो प्रत्येक शरीर वर्गणा तैयार होगी, तो ऐसा बंध को प्राप्त होने पर उनसे अन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा की उत्पत्ति होती है। पहले तो कारमाण वर्गणा थी, अब वो जीव ने ग्रहण किया तो प्रत्येक शरीर वर्गणा हो गई उसकी। अतः नीचे के द्रव्यों के संघात से प्रत्येक शरीर वर्गणा की उत्पत्ति क्यों नहीं कही जाती? प्रश्न तो नीचे के ने आहार वर्गणा, कारमाण वर्गणा, तेजस वर्गणा, ये नीचे के है, और हम कहाँ तक पहुंचे? ऊपर प्रत्येक शरीर वर्गणा तक पहुंचे। यहां तक समझ में आई बात? समाधान नहीं, क्योंकि प्रत्येक शरीर वर्गणा के समागम के बिना केवल नीचे की वर्गणाओं के समुदाय समागम से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक शरीर वर्गणाएं नहीं उपलब्ध होती। क्या कहना चाहते हैं? वहां ऑलरेडी प्रत्येक शरीर वर्गणा थी, क्योंकि जीव, अभी हम नारकी की बात करते हैं, देवी की बात करते हैं, प्रत्येक शरीर वाला है, तो वहां जीव है और उसके छह पुंज है और उसने नए पुंजों को ग्रहण किया है, तब उस वो प्रत्येक शरीर का वहां था वर्गणा, उसके साथ वो जाके मिली है। केवल जीव है ही नहीं है, कुछ नहीं है, और आहार वर्गणा, कारमाण वर्गणा और तेजस वर्गणा अभी यहां पड़ी है ना, जहां जीव नहीं वहां पर भी पड़ी है, तो उनका समुदाय हो जावे और प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्पन्न हो जावे, क्या ऐसा हो सकता है? कारमाण है ना, कारमान तेजस तो लेके चार पुंज के साथ तो है ही जीव, ख्याल में आई ना बात? और वहां पर उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा ही कहने में आता है, यानी प्रत्येक शरीर वर्गणा ऑलरेडी था, उसके साथ ही जाके समागम को प्राप्त हुए हैं, नहीं तो ऐसे अंतराल में ही वो प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा उत्पन्न होगी तो कैसे? ऐसा नहीं है, ये कहना है। कितना सूक्ष्म विवेचन है ना, यानी केवल नीचे के वर्गणाओं के समुदाय से उत्पन्न नहीं हो रहा है, प्रत्येक शरीर वर्गणा थी उसके साथ ही जाकर मिले हैं। दूसरे यानी दूसरा पॉइंट, योग के वश से एक बंधन बद्ध औदारिक तेजस और कार्मण परमाणु पुद्गल स्कंध अनंतानंत विश्रसोपचयों से उपचित होते हैं। नहीं, वो एक बंधन में बंधे ना, औदारिक तेजस और कारमण का एक दूसरे के साथ बंध हुआ है और उसके अपने अपने विश्रसोपचय भी है, परंतु वे सब शांतर निरंतर आदि नीचे की वर्गणाओं में कहीं भी सदृश धन वाले नहीं होते, क्योंकि वे प्रत्येक वर्गणा के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं। यानी प्रत्येक स्वर्गणा बहुत इतनी बड़ी है, उसके असंख्यातवा भाग उसमें होता है। वे प्रत्येक शरीर जगन्य वर्गणा के सदृश भी नहीं होते। प्रत्येक शरीर जगन्य वर्गणा कहाँ देखी थी याद है? किसके अंत में? चौदह बारहवें के अंत में, तो बादर निगोद वर्गणा। हाँ, क्योंकि देखो उसके भी सदृश नहीं होते, क्योंकि वे उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण होते, क्योंकि नीचे की वर्गणाओं के कितने ऊपर हम गए, अनंत स्थान जाके ये उत्पन्न हुआ था। वे अलग रूप से वर्गणा संज्ञा को भी नहीं प्राप्त होते, क्योंकि जीव से अलग होने के काल में उनका एक बंधन नहीं होता। क्या कहते हैं? वो जब जीव से अलग हुए हैं तब उसको एक बंधन बद्धन नहीं होते, वो अलग अलग छूट छूट कर निकल जाते। इसलिए नीचे की वर्गणाओं के संघात से प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं उत्पन्न होती, यह सिद्ध हुआ। अब बाकी चर्चा कल करेंगे, है ना? हाँ, क्या क्या? छह पुंज है, वो प्रत्येक शरीर ही जीव है। हाँ, वही तो कहते, वो एक बंधन बद्ध नहीं है उसमें। और उसके प्रत्येक शरीर वर्गणा नाम नहीं रहेगा, वो तो अलग से पाठ आता है उसके लिए, बताया था उन्होंने। अब यही रुकेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अश्विन।